अध्याय दो उदारवाद। उदारवादी विचारधारा अन्य विचारधाराओं की भांति निश्चित और क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। उदारवाद ना तो किसी एक व्यक्ति के विचारों का परिणाम है और ना ही वह विचारधारा किसी एक युग के साथ जुड़ी हुई है। वास्तव में यह कोई दर्शन नहीं वरन अनेक विचारकों का सम्मिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि क्रम तथा मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श एवं संस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप में से एक कठिन कार्य हो सकता है। उदारवाद क्या है, इस संबंध में अनेक प्रकारों के विचार प्रचलित रहे हैं। उदारवाद का घर इंग्लैंड रहा है और इंग्लैंड में उदारवाद का उदय अनुदारवाद का विरोध करने वाली एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ, इसलिए अनेक व्यक्ति उदारवाद को अनुदारवाद का विलोम तथा प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जब अनुदारवादी ब्रिटेन में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं, परंपराओं और रूढ़ियों को बनाए रखना चाहते थे, उस समय उदारवाद के द्वारा सुधार, परिवर्तन और प्रगति का प्रतिपादन किया गया। लेकिन उदारवाद की प्रगति और परिवर्तन का पर्यायवाची नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा हमेशा परिवर्तनों का स्वागत नहीं किया गया और परिवर्तन का स्वागत करने के बजाय कुछ अवसरों पर इसने विद्यमान अवस्था को बनाए रखने का पक्ष लिया। इसके अतिरिक्त उदारवाद परिवर्तन हेतु क्रांति के मार्ग को अपनाने को नितांत विरुद्ध है। कुछ व्यक्ति उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य नहीं। यद्यपि व्यक्तिवाद उदारवाद का अभिन्न अंग है, किंतु दोनों एक ही चीज नहीं। जॉर्ज सेवाइन ने लिखा है, लगभग 1730 तक तो इन दोनों में कोई भेद नहीं था, क्योंकि उस समय तक ये दोनों विचारधाराएं व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की विरोधी थीं। लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई। ग्रीन जैसे उदारवादियों के द्वारा नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ सकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा गया कि समाज के सभी सदस्यों के कल्याण और विकास के लिए राज्य के द्वारा समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि जन कल्याण के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़े तो करना चाहिए। प्राय लोकतंत्र को ही उदारवाद का नाम दे दिया जाता है, लेकिन यह भी सीमित अर्थ में ही सही है। आधुनिक लोकतंत्र बहुसंख्यक वर्ग की सत्ता में विश्वास करता है, लेकिन उदारवाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बहुसंख्यक वर्ग की अपेक्षा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के प्रति अधिक जागरूक है। इस प्रकार उदारवाद लोकतंत्र से कुछ अधिक हो सकता है। उदारवाद परिवर्तन और प्रगति का संदेश देता है और व्यक्तिवाद तथा लोकतंत्र भी इसमें शामिल है। लेकिन उदारवाद केवल यही नहीं है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय पर अब तक दो प्रकार की विचारधाराओं का प्रतिपादन किया गया है। एक प्रकार की विचारधाराएं राज्य को समस्त मानवीय जीवन का केंद्र और अपने आप में एक साध्य मानती है, लेकिन दूसरी श्रेणी की विचारधाराएं इस बात का प्रतिपादन करती है कि व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति ही साध्य है। उदारवाद द्वितीय प्रकार की विचारधाराओं का समूह है, जो इस बात पर बल देता है कि समस्त मानवीय व्यवस्थाओं का केंद्र व्यक्ति ही है। राज्य, समाज और अन्य संस्थाएं इस व्यक्ति के कल्याण के साधन मात्र ही हैं और समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र में रखकर ही किया जाना चाहिए। उदारवाद की पृष्ठभूमि या उदय। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उदारवाद का उदय अनेक प्रवृत्तियों का परिणाम था, जिनमें से कुछ निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय। मध्य युग में लोगों का आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं था, कृषक सामंतों के अधीन हुआ करते थे और दस्तकारी तथा व्यापार पर भी अनेक नियंत्रण थे। दस्तकारी पर उनकी श्रेणियों का नियंत्रण हुआ करता था, जो गिल्ड कहलाती थी। इसके अतिरिक्त चर्च भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप किया करता था। आर्थिक जीवन को गतिविधियों के संबंध में अनेक धार्मिक तथा नैतिक नियम थे। 16वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। इस उत्पादन के परिणाम स्वरूप जितनी तेजी से समृद्धि आई, उतनी ही गति से आर्थिक जीवन पर चले आ रहे नियंत्रण समाप्त होने लगे। समाज में जो नवीन समृद्धि वाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था, उसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक संपत्ति प्राप्त करना था। यह वर्ग उन समस्त नियमों और प्रतिबंधों का विरोध करने लगा जो अधिकाधिक संपत्ति के अर्जन में बाधक थे। यह नवीन समृद्धशाली वर्ग सामाजिक जीवन में बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया था और उसने अपने प्रभाव से इस बात को स्वीकार करवा लिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता की भावना उदारवाद का स्रोत बन गई। दूसरा, नवजागरण। प्राचीन युग में यूनानी जीवन के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन को आधारभूत रूप में महत्व प्राप्त था। उनके चिंतन का रूप लौकिक था और प्राचीन यूनानियों ने दर्शन, साहित्य और कला विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की थी। लेकिन मध्ययुग में पारलौकिक दृष्टिकोण का अपना लिया गया और चिंतन का एकमात्र केंद्र जानने के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों में कोई प्रगति संभव नहीं हो सकी। मध्ययुग में व्यक्ति को भुला दिया गया, लेकिन आधुनिक युग के आरंभ में लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिंतन पर पड़ी और नवजागरण के नाम से एक बौद्धिक आंदोलन चल पड़ा, जिसने लोगों के विचारों, आदर्शों और चिंतन की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। नवजागरण ने व्यक्तियों के दृष्टिकोण को लौकिक बनाया, व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया और उन्हें यह सिखाया कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग श्रद्धा और अंधविश्वास का नहीं, वरन बुद्धि और विवेक का है। इस प्रकार नवजागरण ने व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देकर उदारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, धर्म सुधार। मध्ययुग में न केवल राजनीतिक वरन धार्मिक निरंकुशता का प्रसिद्ध रहा। धार्मिक क्षेत्र में पोप लोगों का राज था और ऐसा माना जाता था कि पोप शास्त्रों का जो अर्थ बतलाते हैं वह बड़ी प्रमाणिक है। 17वीं शताब्दी के सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई और मार्टिन लूथर, जिंगली तथा कॉल्विन आदि धर्म सुधारकों के द्वारा धार्मिक निरंकुशता का विरोध आरंभ कर दिया गया। धर्म सुधार ने परंपराओं के बंधन तोड़कर आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। लूथर ने सिखाया कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्नों से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है और धार्मिक क्षेत्र में शक्ति प्रयोग के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। इस प्रकार धर्म सुधार ने धार्मिक जीवन की बुराइयों का अंत कर दिया। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में, धर्म सुधार के सिद्धांत तथा सामाजिक परिणाम व्यक्ति के लिए मुक्तिवाद सिद्ध हुए। छेवां, निरंकुशतावादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उदारवाद के जन्म के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी तत्व निरंकुशवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया ही रहा। 17वीं और 18वीं शताब्दियों यूरोप के इतिहास में निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से अनेक राज्यों के शासकों द्वारा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया गया था। इनमें से कुछ सरकारें तो इतनी अधिक निरकुंश और अमर्यादित हो गई थी कि आशीर्वादम के शब्दों में उनके अर्थहीन कानून निश्चित दिनों के लिए विशिष्ट प्रकार के भोजन निर्धारित करते थे तथा मुर्दों को दफनाने के लिए विशेष प्रकार के वस्त्रों का व्यवस्था की जाती थी। इस प्रकार के निरकुंशवादी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना स्वाभाविक था और जॉन लॉक, मिल, स्पेंसर तथा ग्रीन के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता और उदारवाद का प्रतिपादन किया गया।